इंडिया विल बिकम द गेमिंग नेशन ऑफ द वर्ल्ड. आज के दिन यंगस्टर्स इंडिया में साल के फ्यू करोड़ तो कमा रहे हैं, तो अपॉर्चुनिटीज तो बढ़ रही है. एशियन गेम्स में इस टाइम पहली बार गेमिंग और ई स्पोर्ट्स फीचर हुए थे. ओलंपिक्स में अभी बात है कि आते हुए मे बी 28 में या जब भी ई स्पोर्ट्स एंड गेमिंग इंट्रोड्यूस करा जाएगा.
इंडिया में है क्या सस्टेनेबल करें?
ई स्पोर्ट्स जो एक ट्रेंड है कॉम्पिटिटिव गेमिंग का, बाहर तो काफ़ी भरे टूर्नामेंट्स होते हैं. यूएस में अगर आप देखिए तो टूर्नामेंट्स होते हैं लीग ऑफ लीजेंड्स और सबके, जिनका प्राइज मनी 200-300 करोड़ रहता है. वहाँ तो बन गया है, इंडिया में भी अभी बन रहे हैं.
अभी तो गवर्नमेंट विनिंग प्राइस पे 30% चार्ज कर देती है ना.
हाँ,
30% टैक्स ऑन एवरी विनिंग प्राइस. यू फील दैट्स लाइक टू मच? नज़ारा टेक्नोलॉजीज करता क्या है, कहाँ से स्टार्ट हो? लाइक मेरे को एकदम स्टार्ट करो कि बेसिक टर्म्स में अगर सबको समझाना है तो क्या करते हो आप लोग?
सर, नज़ारा एक गेमिंग और स्पोर्ट्स मीडिया प्लेटफॉर्म है. हम अलग अलग तरीके के गेम्स बनाते हैं और कंज्यूमर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. गेम्स छोटे बच्चों के लिए रहते हैं, जैसे हमारे बहुत पॉपुलर किडोपिया करके ऐप है जो 2 से 8 साल के बच्चे खेलते हैं. इट्स गेमिफाइड लर्निंग, हम खेलते भी है, काफ़ी इन्जॉय करते हैं और कुछ सीखते भी है, तो पेरेंट्स भी खुश रहते हैं. सो किडोपिया हमारा काफ़ी पॉपुलर है इंडिया में भी, यूएस में भी. अभी हाल में टिम कुक ऑल्सो ट्वीटेड अबाउट किडोपिया
ऑर्गेनिकली. क्या ट्वीट किया उसने?
गुड फॉर अस कि किडोपिया का पॉजिटिव इम्पैक्ट बच्चों पे कैसे हो रहा है.
क्या बात कर रहे हैं?
करेक्ट. सो फिर हमारा वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियनशिप गेम है, जो इंडिया का सबसे लॉन्ग स्टैंडिंग और सबसे पॉपुलर क्रिकेट गेम ऑन मोबाइल है.
क्या है?
कुछ लगभग 1 करोड़ यूजर्स या गेमर्स हर महीने उसको खेलते हैं, विच इज़ प्लेइंग क्रिकेट ऑन योर मोबाइल फोन, वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियनशिप. तो ऐसे अलग अलग तरीके के गेम्स हम लोग बना के डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. फिर थोड़े एडजेसेंसी बिजनेसेस भी हमारे हैं, जैसे एक स्पोर्ट्स कंटेंट डेस्टिनेशन है कॉल्ड स्पोर्ट्स कीड़ा, जिसके भी लगभग अभी कुछ 100 मिलियन यूजर्स है महीने के. इंडिया में काफ़ी पॉपुलर है, पर ताजुब की बात है यूएस में नंबर 5 है.
तो उसमें कौन कौन से गेम्स होते हैं?
नहीं, स्पोर्ट्स खेला तो स्पोर्ट्स कंटेंट है. अच्छा. स्पोर्ट्स लेके, क्रिकेट लेके, एनबीए लेके, सारे टाइप के स्पोर्ट्स कंटेंट रहते हैं. सो काफ़ी डाइवर्स बिजनेसेस है. हम ऑर्गेनिकली बनाते, काफ़ी कंपनीज को हमने खरीदा भी है, तो उस तरीके से हम एक प्लेटफॉर्म बन गए. और नए नए टेक्नोलॉजीज जैसे VR है, Web3 है, AI इन गेमिंग है, उनमें भी हम काफ़ी काम कर रहे हैं.
मेरे को आप स्टार्ट से बताओ कि कहाँ से ये स्टार्ट हुआ और कैसे ये आइडिया है कि मैं गेम्स बनाऊंगा. आपका बैकग्राउंड कहाँ है, कहाँ से स्टार्ट किया? लाइक स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, मेरे को स्क्रैच से बताओ.
मेरी स्टोरी तो काफ़ी जल्दी चालू होती है, बिकॉज आई स्टार्टेड कोडिंग गेम्स. मैं गेम्स कोड कर रहा था बेसिक लैंग्वेज में जब मैं 7 साल का था.
7 अच्छा.
तो मेरी फैमिली टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में थी, कॉटन मिल था हमारे फैमिली में. बट मेरे फादर ने मुझे एक ZX Spectrum, जो एक PC का प्रीकर्सर होता था, गिफ्ट करा था जब मैं 6 साल का था. एंड आई फेल इन लव विथ इट. तो पूरे दिन पूरी रात उसी में बैठा रहता था. पहले गेम्स खेलना चालू करा, फिर गेम्स बनाना चालू करा. तो 7 की एज से ही मैं गेमिंग में घुस गया था, कोडिंग कर रहा था. फिर बॉम्बे में ही मैं मेरा BCom कर रहा था सिडनम कॉलेज में. कुछ लेक्चर्स तो वहाँ अटेंड करता नहीं था. 5 साल में मैंने 8 लेक्चर्स अटेंड करे, एवरेज ऑफ 1.6 लेक्चर्स. बट एक इंटरेस्टिंग बात थी, मेरी एक दोस्ती हो गई थी अपने फेमस लीजेंडरी एक्टर शमी कपूर के साथ.
अच्छा.
मैं 16 का था, वो 60 के थे जब हमारी दोस्ती हुई.
60?
हाँ, ही वाज 60, आई वाज 16.
कैसे दोस्ती हुई शमी कपूर से जब वो 60 थे और आप 60?
तो उनका एक बहुत दिलचस्पी उस उम्र में थी कंप्यूटर्स और इंटरनेट को लेके.
अच्छा.
वो एक अर्ली अडॉप्टर थे इंटरनेट के, और मैं सिडनम कॉलेज में था, उनको एक बार इनवाइट करा था मेरे कंप्यूटर सेंटर को इनॉग्रेट करने के लिए. उसके बबाद हमारी दोस्ती हो गई. तो उनके घर में 3-4 मैकिंटोशेस रहते थे. नाउ मैं 16 साल का था, कंप्यूटर एंथुजियास्टिक था, तो कॉलेज बंक करके उनके घर चले जाता था. तो हफ्ते में एटलीस्ट 2 बार उनके घर चले जाता था वो कंप्यूटर्स पे खेलने के लिए. तो उनके साथ भी बहुत टाइम स्पेंड करके, वो काफ़ी इमेजिनेटिव थे, काफ़ी बातें करते थे कि इंटरनेट से क्या होगा. ये मैं बात कर रहा हूँ अर्ली 90s की, मिड 90s की.
ओके. तो मतलब वेट, मेरे को ये स्टोरी बताओ कि वो आपके कॉलेज में है, आपने बस बात करी कि मैं आपके घर में खेलने आऊँगा.
बन गई दोस्ती एक कॉमन इंटरेस्ट पे.
अच्छा.
और फिर उन बातों से काफ़ी मेरे भी इमेजिनेशन ग्रो होने लगा कि इंडिया में गेमिंग काफ़ी बढ़ सकता है. इंटरनेट का काफ़ी इम्पैक्ट हो सकता है। सो जब मैं सिडनम कॉलेज में था, जब ही मैंने ये कंपनी चालू करी थी लेट 90s में, 98-99 में।
नो वेट, अभी तक मुझे ये नहीं पता चला आपने उनको बोला क्या और फिर कंपनी कैसे स्टार्ट हुई वापस, देयर इज अ लॉट ऑफ गैप। तो ये समझ गए कि उनसे आपकी दोस्ती हुई, आप उनके घर गए, आपने खेला गेम्स खेले, बट जब वो कॉलेज में है तो उनसे बात क्या करी?
सो एक कंप्यूटर सेंटर जो हमारे कॉलेज में चलता था उसका चेयरपर्सन था।
अच्छा।
तो शमी कपूर के साथ, बिकॉज ही वॉज अर्ली पायनियर इन इंटरनेट इन मुंबई सर्कल्स, तो उनसे पहले कॉन्टैक्ट करा, उनके साथ मैं टच में था। सो जब भी उनको कॉलेज इन्वाइट करा, एक दो बार ऑलरेडी उनके घर विजिट करा था, थोड़ा एक जान पहचान हो गया था, एक कॉमन पैशन निकला था कि क्या नई टेक्नोलॉजीज में हो रहा है, जैसे आज आप लोग टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो ऑलरेडी एक रिलेशन बन गया था।
अच्छा।
जब तक वो कॉलेज आए।
गॉट इट, गॉट।
और फिर सोचते सोचते मैं मारवाड़ी बिजनेस फैमिली से आया था, पर कुछ नया करना था, गेमिंग मेरा पैशन था, कुछ बिजनेस करने की इच्छा तो थी, तो मैं सोचा गेमिंग में कुछ करते, गेमिंग में आगे चल के बिजनेस अच्छा बन सकते हैं। पर जब भी मैंने चालू करा 99 में, मैंने रियलाइज नहीं करा कि मैं इतना जल्दी था मार्केट में, एटलीस्ट 10-12 साल बहुत जल्दी था मार्केट में। पर उस टाइम मैं यंग था, आई मस्ट हैव बीन 20 years old व्हेन आई स्टार्टेड द कंपनी, तो आई वाज नॉट सो एक्सपीरियंस्ड, सो मार्केट टाइमिंग वाज नॉट देयर, बट आई स्टार्टेड द कंपनी 2000 में। चालू करने के बाद पूरा .com क्रैश हुआ। .com क्रैश में मैंने भी काफ़ी पैसा खोया।
अच्छा।
तो आई वॉज 21 और मेरा उस टाइम 3 crore का डेट था, जो मैंने काफ़ी लोगों से बोरो करा हुआ था। उस टाइम का 3 crore आज का 30 crore हो गया। सो आई स्ट्रगल्ड अ बिट एंड माय मॉम वाज वेरी कीन कि मैं एक यूएस में जाके एमबीए करूं। तो मेरी एमबीए इधर ही हो गई, बहुत एक्सपेंसिव एमबीए और काफ़ी एनरिचिंग एमबीए। तो 3 साल वो स्ट्रगल में, बट कुछ ना कुछ तरीके से ढूंढ ढांग के, कुछ बिजनेस चला के 2004 तक आई पेड बैक ऑल दैट मनी दैट हैड बोरोड एंड आई सेड अभी गेमिंग में वापस कुछ करते हैं। सो सेकंड रीबूट 2004 में हुआ। 2004 में अपने नोकिया सीरीज 60 फोन आने लग गए थे, तो मोबाइल फोन पे गेमिंग
स्टार्ट हो,
इनिशियल्स चालू हो गया था,
स्नेक गेम आ गया,
स्नेक गेम सब सब। तो हमने क्रिकेट गेम्स बनाना चालू करे। अब कस्टमर को चार्ज कैसे करे, उस टाइम डिजिटल बिलिंग UPI और सब तो रहता नहीं था, माइक्रो बिलिंग एक ही तरीका था, मोबाइल फोन ऑपरेटर के बिल के थ्रू। तो मैं मोबाइल ऑपरेटर्स के साथ टाइप करना चालू करा। शुरू शुरू में BPL के साथ टाइप हुआ, फिर मुझे एयरटेल के साथ पार्टनरशिप करनी थी। एयरटेल से मेरी पार्टनरशिप हो रही नहीं थी, बिकॉज मैं अननोन कंपनी था, वो बहुत लार्ज बिजनेस थे। तो एक दिन मेरे ऑफिस में बैठे बैठे मैं सोचा कि मैं क्रिकेट गेम बना रहा था। उस सालों में एयरटेल के ब्रांड एम्बेसडर होते थे सचिन तेंदुलकर। तो मेरे को ऐसे ही थॉट आया कि मैं सचिन को ब्रांड एम्बेसडर बनाता हूँ मेरे गेम का, तो फिर एयरटेल को मेरे साथ काम करना ही पड़ेगा। तो ये सोच से मैंने एयरटेल के, सचिन के एजेंट वोल्टेल होते थे, उनके वेबसाइट पे जाके उनको एक मेल डाल दिया। 6 महीने के बाद आई फाउंड माई सेल्फ सिटिंग वन डे इन सचिन्स होम इन बांद्रा। उस सालों में सचिन यूज टू बी गॉड, राइट? आई वॉज 24 दैट टाइम, सचिन यूड ग्रोन अप सचिन, राइट? तो आफ्टर दैट फैन बॉय मोमेंट,
2004 अच्छा हाँ, ये जस्ट 2003 के बाद वाला टाइम, क्रेजी फैन फैंडम टाइम, यस।
सो आफ्टर हैविंग दैट 5 मिनट्स फैन बॉय मोमेंट, आई पिच्ड माय स्टोरी टू हिम एंड आई मैनेज टू गेट हिम टू अग्री टू बिकम माय ब्रांड एम्बेसडर। मैं उनको उस टाइम, उनका इंडोर्समेंट फी कुछ साल का $1 million होता था, इट वॉज अ रिकॉर्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम,
7-8 crore रुपए, मतलब उस टाइम
पे 4-5 crore। मैं तो कुछ 5-10 lakh भी नहीं दे सकता, बट आई टोल्ड हिम कि आपके जो यंग फैंस हैं उनको ये बहुत अच्छा लगेगा, एंड सचिन कनेक्टेड विद दैट। थोड़ा मैं काम करके भी गया था, उनका गेम बना के गया था, उनका गेम में कैरेक्टर बना के गया था टू डेमोन्स्ट्रेट टू हिम, विच ही रियली लाइक्ड, सो आई गॉट दैट डील। उस डील होते से मेरी एयरटेल की डील हो गई, तो एक तो मेरा बिजनेस थोड़ा चालू हो गया, एंड दूसरा जो मैंने सोचा नहीं था, जो साइड इफेक्ट हुआ इसका या पॉजिटिव इफेक्ट हुआ, आई वॉज इंटरव्यूड इन CNBC फॉर दिस डील,
सचिन के,
हाँ, CNBC का उस टाइम यंग टर्क्स प्रोग्राम आता था,
शरीन मान,
हाँ,
आज भी आता है।
सो उस टाइम आई वॉज इंटरव्यूड ऑन दैट एंड माय इन्वेस्टर्स वेजबिज कैपिटल, उनका जो मेन पार्टनर थे संदीप सिंगल, उन्होंने मेरा इंटरव्यू देख के मेरे को अगले दिन फ़ोन करा।
तब तक वो इन्वेस्टर नहीं,
नहीं, नहीं। मैं तो परस्यू भी नहीं कर रहा था, वेंचर कैपिटल समझता भी नहीं था उस टाइम. सो आई गॉट अ कॉल फ्रॉम हिम एंड फिर उसके बाद 6 महीने काम करके उन्होंने कुछ मेरे कंपनी में 6 करोड़ रुपये इन्वेस्ट करा. दैट वॉज द स्टार्टिंग ऑफ यू नो द नेक्स्ट लेवल ऑफ ग्रोथ. और बिकॉज जो अर्ली ईयर्स मैंने काफ़ी स्ट्रगल करा था, मैं थोड़ा ओल्ड स्कूल हो गया था. ओल्ड स्कूल मतलब पैसा बनना चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी बननी चाहिए, कैश फ्लो बनना चाहिए. तो 2007 से 2014 तक मैंने पैसा रेज तो खाली 12 करोड़ करा था, बट प्रॉफिट्स मैंने कम से कम 200 से 250 करोड़ प्रॉफिट बनाए. तो 2014 में मेरा बैंक बैलेंस कंपनी का वाज अबाउट 250 करोड़ रुपीज, बिकॉज आई वॉज रनिंग एकदम लीन एंड मीन. लीन एंड मीन बिजनेस चलाओ, प्रॉफिटेबिलिटी फोकस करो, काफी इम्प्लीमेंट करा, विच वॉज फ्लोट लाइक अ बटरफ्लाई स्टिंग लाइक अ बी. एकदम एसेट लाइट बिजनेस चलाओ और जहाँ अपॉर्चुनिटी दिखे उसको कैपिटलाइज करो. दैट वर्क्ड वेल फॉर मी. राकेश झुनझुनवाला इन्वेस्टेड इन द कंपनी, विच गिव अस लॉट ऑफ क्रेडिबिलिटी.
ओके, तो इसमें अभी मतलब आपने बताया बिग बुल राकेश झुनझुनवाला सर ने आप किस में इन्वेस्ट किया, तो क्यों इन्वेस्ट किया, कैसे इन्वेस्ट किया, आपने मीटिंग हुई, व्हाट वाज द स्टोरी?
जरूर. तो हमारे एक आईपीओ के प्लान्स चल रहे थे. उस विषय में एक हमारे ओरिजिनल इन्वेस्टर जो थे राकेश जी को जानते थे, तो ही टुक मी टू मीट हिम. और राकेश जी ने एक मीटिंग हुई मेरी उनके साथ 1 घंटे की, मे बी नॉट इवन 1 आवर, 45 मिनट्स की. बट उन्हें 2-3 चीज़ हमारी कंपनी में अच्छी लगी. उनका जो वैल्यू फोकस था, एक तो कैपिटल एफिशिएंसी कंपनी में है कि नहीं, वैल्यू फॉर कैपिटल है कि नहीं. हमने कंपनी 12 करोड़ में बनाई थी तो वो उन्हें काफ़ी अच्छा लगा. दूसरी फोकस ऑन प्रॉफिट, बिकॉज न्यू एज बिजनेस ज़्यादातर लॉस मेकिंग, बर्न बेस्ड ग्रोथ कर रहे थे, वो उन्हें समझ में नहीं आ रहा था. ऑल्दो मेरा व्यू आज के दिन है कि कोई काफ़ी बिजनेसेस को करना चाहिए, करना अपॉर्चुनिटी है, बट हिज पॉइंट ऑफ व्यू वॉज कि प्रॉफिटेबल चलना चाहिए. तो वो उनको अच्छा लगा. उनके घर में छोटे बच्चे थे, उनके सन्स शायद 10 साल के थे उस टाइम. तो उन्हें घर में दिख रहा था कि गेमिंग एक मेगा ट्रेंड है, राइट. तो ये सब की वजह से उन्हें हमारी स्टोरी अच्छी लगी और उन्होंने कुछ 200 करोड़ रुपया 1 घंटे की मीटिंग में डिसाइड करके कमिट कर दिया.
What do you feel, US और इंडिया के मार्केट में? नहीं, हर कोई बोलता है कि जो US में 2-4 साल पहले चलता है, 5 साल पहले चलता है, वो इंडिया 5 साल बाद आएगा ही आएगा. डू यू थिंक ऐसा होता है?
आई थिंक अभी ट्रेंड्स थोड़े शिफ्ट हो रहे हैं, जिसमें काफ़ी चीज़ें इंडिया में इनोवेट हो रही है.
जैसे
तो पहले जो आप बोल रहे हो करेक्ट था कि 5 साल पहले एक लैग इफेक्ट है. US में पहले आएगा, फिर इंडिया में आएगा, फिर दूसरे मार्केट्स में जाएगा. अभी जैसे ई स्पोर्ट्स लीजिए, ई स्पोर्ट्स इज स्पेक्टेटर्स बेस्ड कॉम्पिटिटिव गेमिंग. इंडिया में जो उसके अराउंड इनोवेशन हो रहा है, एक्चुअली काफ़ी दूसरे मार्केट्स में एक्सपोर्ट हो रहा है. तो जैसे ये जो डिजिट जो मोबाइल फोन्स है, वो एक काफ़ी लेवल क्या बोल सकते हैं, एक लेवलिंग हो गई है या इक्वलाइजिंग हो गई है, कि जो आप लोग पहले पीछे रहते थे वो अभी काफ़ी ऑन पार आ गए. आज जो अपनी जो ऑडियंस है, कंज्यूमर बेस है, वो ग्लोबली एक्सपोज्ड है. जो भी लेटेस्ट ट्रेंड्स हो रहे हैं वो ग्लोबली ट्विटर पे, यूट्यूब पे सब देख रहे हैं, राइट. तो आई डोंट थिंक वो लैग इफेक्ट अभी बचा है.
गॉट इट. ओके, कमिंग टू वन क्वेश्चन ऐसे क्विकली मेरे को एकदम से आया, क्योंकि आपने इन्वेस्टिंग की बात करती है, एंड देन वी विल कम बैक टू यूएस इंडिया अगेन. तो इन्वेस्टिंग में अपार्ट फ्रॉम राकेश झुनझुनवाला, कामत ब्रदर्स ने भी आप में इन्वेस्ट किया, राइट? निखिल कामत एंड नितिन कामत, दे हैव इन्वेस्टेड. उन्होंने भी लगभग 100 करोड़ के आसपास नजारों
में अभी हाल में
रिसेंटली डाले. तो क्या स्टोरी, आईपीओ के बाद डाले?
अभी 3-4 महीने पहले.
रिसेंटली मतलब बहुत ही रिसेंट ट्रांजैक्शन है. तो उन्होंने कैसे, क्या ट्रांजैक्शन, मतलब क्या है स्टोरी, हाउ डिड दे गेट कन्विंस? उन्होंने आपसे कभी बात भी करी कि नहीं, डायरेक्ट ही डाल दिए, क्या क्या था सीन?
नहीं, मैं निखिल को मिला था, और अगेन निखिल को बिकॉज ही सच ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, और उन्हें गेमिंग और सब समझ में आता है, ग्लोबल ट्रेंड समझ में आता है. तो उन्हें भी काफ़ी, मेरे मिलने के पहले भी काफ़ी दिलचस्पी ये गेमिंग में हो रही थी, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सनराइज सेक्टर है. तो जब मैं मिला, उन्हें बताया कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी बैक स्टोरी क्या है, 20 साल से हम इसी में लगे हुए गेमिंग में, तो उन्हें वो सब अच्छा लगा. और उन्हें मैक्रो ट्रेंड वापस गेमिंग का काफ़ी अच्छा लगा, और हम लिस्टेड कंपनी है, हम वी आर द ओनली गेमिंग लिस्टेड कंपनी राइट, तो अगर उन्हें लिस्टेड में इन्वेस्ट करना है जो लिक्विड स्टॉक रहता है, एक्चुअली हम ही ऑप्शन थे.
सर लैक ऑफ ऑप्शन की वजह से,
नॉट लैक ऑफ ऑप्शन, आई थिंक वी आर गुड ऑप्शन,
बट ऐसे गुड पिच नहीं दी कभी. यू डिडंट पिच एंड उनको बोला नहीं कि हम में क्यों इन्वेस्ट करो.
नहीं, मैं मिला था उन्हें, बैंगलोर जाके मिला था एट हिज होम, वी हैड अ गुड कपल ऑफ आवर्स मीटिंग, और उसके बाद ही आई वाज सक्सेसफुल. सो ही लाइक द पिच.
ओके, अच्छा है, तो ही लाइक द पिच. व्हाट डिड यू पिच, व्हाट वाज द मोस्ट लाइक, अगर क्रक्स ऑफ द पिच बताना हो तो कैसे?
क्रक्स ऑफ द पिच मैंने अभी आपको बताया
कि मैं ही हूं
गेमिंग मैक्रो ट्रेंड, और मैं ही ऑप्शन हूं.
गेमिंग एक मैक्रो ट्रेंड है, ऑप्शन सिर्फ मैं ही हूँ, और देख लो प्रॉफिटेबल हूँ. तीनों टिक जो है वो मेरे पास ही हैं, तुम कर लो बाकी. तो इंटरेस्टिंग, गेमिंग पे बात करते हैं थोड़ी बहुत. रिसेंटली इनफैक्ट मैंने ट्रेलर देखा GTA 6 का, देखा मैं?
हाँ,
राइट, यू सॉ. व्हाई GTA 6 का वैसे हाई पिता दादा क्यों, आपको क्यों लगता है?
आई थिंक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है पहले से,
बट उसको बहुत वायलेंट गेम बोल रहे हैं लोग अभी जो ऑनलाइन आ रहा है बहुत ज़्यादा. लाइक अ लॉट ऑफ पीपल आर अगेंस्ट इट, कि बहुत वायलेंट गेम है, ये बच्चों को फिर वायलेंट बनाएगा. डू यू थिंक गेम हैज एन इम्पैक्ट ऑन द कल्चर?
आई थिंक थोड़े एक्सटेंट तक तो रहता है, तो जैसे मूवीज रहती है राइट, आज मूवीज का भी इन्फ्लुएंस बहुत रहता है, एंड कौन सी एज की मूवीज है, कोई PG-13 मूवी होगी, कोई अबव 18 मूवी होगी. आई थिंक गेम्स भी आज के दिन वही रेटिंग्स पे चलते हैं, तो इन्फ्लुएंस तो रह गई. अगर आप गेमिंग लो या मूवीज लो या बुक्स लो, जो भी कंटेंट आप कंज्यूम करोगे, इंस्टाग्राम ले लो, कुछ भी कंज्यूम करोगे, उसका इन्फ्लुएंस तो आप पे रहना ही है. आई थिंक प्रॉपर एज गेटिंग और रिस्पॉन्सिबल गेमिंग अगर है तो उसमें प्रॉब्लम नहीं.
भले माई क्वेश्चन इज, यू नो आई रिमेंबर कि जब मैं वाइस सिटी खेलता था या सैन एंड्रियास खेलता था जब स्कूल में, तब भी शायद वो 18+ गेम ही था. हम तो भी स्कूल में खेल लेते थे, तो बहुत इजीली एक्सेसिबल हो जाता है गेम.
आप 18+ मूवी भी देखते होगे.
But 18+ मूवी देखना थिएटर में जाना इज वेरी डिफिकल्ट वर्सेस प्लेइंग अ गेम.
आई अग्री. तो आई थिंक थोड़ा सोशल रिस्पॉन्सिबल गेमिंग इज इम्पॉर्टेंट. एट द सेम टाइम आई थिंक इतना नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है जितना परसीव्ड है. जैसे मेरे को दिखता है कि अभी भी एक जनरल कल्चर है या जनरल परसेप्शन है दैट गेमिंग इज ऑल बैड. बट मैं देखता हूँ, मेरे घर में भी देखता हूँ, आई हैव यंग किड्स, कि जितना उनका गेमिंग से एडवांसमेंट भी हो रहा है, लर्न कर रहे हैं, हैंड आई कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं, उसमें काफ़ी पॉजिटिव्स भी
है. एक्सप्लोरेशन स्किल्स
बढ़ते हैं, सो देयर इज अ लॉट ऑफ पॉजिटिव. तो क्या होता है, वो 5% नेगेटिविटी ब्लो अप हो जाती है, 95% पॉजिटिविटी दिखती नहीं है.
आपको लगता है गेम खेलने के फायदे ज़्यादा है नुकसान से?
आपको क्या लगता है मैं क्या बोलूंगा?
ऑफ कोर्स आप जो बोलोगे, बट मेरे को क्यों, मैं पूछना था क्यों, और जस्टिफिकेशन दो, लाइक व्हाई डू यू बिलीव इन सो. 100% आप जो बोलोगे फेवर में बोलोगे, बट स्टिल
जरूर. जैसे मैंने बोला कि आज के दिन जो टेक्नोलॉजी की वर्ल्ड है, आप एक टेक वर्ल्ड में ही रह रहे हैं, और आगे वो बढ़ती जा रही है. AI जिस तरीके से अभी पेस ले रहा है, तो टेक्नोलॉजी हैंडीकैप तो होना बहुत ही बुरी बात है. जितने यंग एज से आप टेक सेवी बन जाए इतना बेटर है. और गेमिंग एक ऐसी मीडियम है जो यंग बच्चों को भी टेक्नोलॉजी में बहुत जल्दी एक्सपोज कर देती है राइट. तो एक वो ऑन रैम्पिंग है, बट अक्रॉस डेमोग्राफिक अगर आप देखिए, आज मेरी ग्रैंड मदर है, वो 90 ईयर्स की, इतनी मोबाइल नहीं है, पर घर पर बैठ के पूरे दिन वर्ड गेम्स खेलती है और दूसरों के साथ कम्पीट करती है लीडर बोर्ड पे. उनको बहुत अच्छा टाइम पास हो रहा है, माइंड एक्टिव है राइट, और एंटरटेनमेंट हो रहा है, शी इज हैप्पी. तो अक्रॉस डेमोग्राफिक्स मेरे को दिख रहा है, खाली बच्चों की बात नहीं है कि गेमिंग इज प्लेइंग अ पॉजिटिव रोल इन वन वे और अदर, इसलिए अडॉप्शन भी इतना लार्ज है.
गॉट इट. ये फेयर. मतलब मेरी मेरी मासी हैं, शी आई थिंक शी मस्ट बी इन द 60s और मोर, 70s प्रोबेबली, एंड वो खेलती हैं बहुत गेम, और दिन भर लूडो खेलती हैं और रैंडम स्ट्रेंजर्स के साथ. इनफैक्ट अब वो उस लेवल पे पहुंच चुकी है वेयर शी डजंट लाइक टू प्ले लूडो विद हर होल फैमिली मेंबर्स, शी जस्ट वांट टू प्ले विद रैंडम स्ट्रेंजर्स एंड देन जस्ट प्ले. उनको वो मोड आ गया. माय मॉम प्लेज अ लॉट ऑफ गेम्स, माय दीदी प्लेज कैंडी क्रश ऑलमोस्ट ऑल द टाइम, सो इट्स लाइक आई थिंक आई हैव सीन दैट
अक्रॉस.
एंड देन माय यंगर ब्रदर प्लेज ऑल सॉर्ट्स ऑफ कॉल ऑफ ड्यूटी एंड फीफा एंड लाइक आई डोंट नो व्हाट नॉट. So it's across in my own house. Everybody plays like a lot of games.
In our lives, in a fast moving life, there is stress at every age, right? If you're 3 years old or 13 years old or 30 years old, there is stress. And I think if gaming is helps release that stress a little bit, अगर आप 10 मिनट एक गेम खेल लो और उससे आपको थोड़ा एक रिलैक्सेशन मिलता है तो काफ़ी एक हार्मलेस एक्टिविटी है.
गॉट इट. कैन पीपल बिकम प्रोफेशनल गेमर्स? इज इट अ सस्टेनेबल करियर? इंडिया में है क्या सस्टेनेबल करियर?
सो ई स्पोर्ट्स जो एक ट्रेंड है कॉम्पिटिटिव गेमिंग का, बाहर तो काफ़ी भरे टूर्नामेंट्स होते हैं. यूएस में अगर आप देखिए तो टूर्नामेंट्स होते हैं लीग ऑफ लीजेंड्स और सबके, जिनका प्राइज मनी 200-300 करोड़ रहता है. आपके जो IPL है, विम्बल्डन है, ये सब जो ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स है उसके कंपैरिजन में भरा प्राइस मनी रहता है. तो
200-300 करोड़ गेम जीतने ही मिलते हैं.
करेक्ट.
ओके.
तो वहाँ तो बन गया है, इंडिया में भी अभी बन रहा है. और इंडिया में भी प्राइस पूल्स, हमारी एक कंपनी है नॉडविन गेमिंग जो ई स्पोर्ट्स में ऑलमोस्ट 70-80% इंडिया का बिजनेस उनके पास है. तो मैं देख रहा हूँ अभी कि प्राइस पूल्स एक एक टूर्नामेंट के 2-3 करोड़, 4 करोड़ के प्राइस पूल्स बनने लगे. दूसरी बात अगर आप देखिए तो एशियन गेम्स में इस टाइम पहली बार गेमिंग और ई स्पोर्ट्स फीचर हुए थे. ओलंपिक्स में अभी बात है कि आते हुए मे बी 28 में या जब भी ई स्पोर्ट्स एंड गेमिंग इंट्रोड्यूस करा जाएगा.
रियली?
या एज पार्ट ऑफ ओलंपिक स्पोर्ट. सो पूरी दुनिया इसको काफ़ी सीरियसली ले रही है. या थोड़ा मजाक जैसे लगता है पर जा रहा तो उसी डायरेक्शन में.
ट्रू. एंड यू नो बहुत सारे क्रिएटर्स जो हैं वो गेमिंग क्रिएटर्स बने और वो बहुत बड़े बड़े बन गए. एंड डू यू थिंक कि उनकी लाइफ से वे गेम पर डिपेंडेंट है? मतलब व्हाट आई मीन बाय दिस कि वो शायद कल क्रिएटर ही ना बचे अगर एग्जाम्पल मान लो पबजी ना रहे तो.
Correct.
या फोर्टनाइट ना रहे, बाहर होता है जैसे इंडिया में, राइट? तो अगर एक गेम नहीं रहा हो तो वो पूरे 15-20 जो क्रिएटर्स है जो आज करोड़ों रुपए में कमा रहे हैं फिर वो कल बचेंगे ही नहीं, क्योंकि उनको देखते हैं तो लोग गेम खेलने के लिए.
वो है क्योंकि इंडिया में अगर आप देखिए तो भरे जो टाइटल्स हैं, जो गेम जो लोग वॉच करते हैं, इंडियन यूजर्स, ऐसे 5-6 टाइटल्स हैं.
क्या है?
इंडिया में BGMI है, फ्री फायर है.
BGMI इज पबजी, राइट?
पबजी.
हाँ.
अभी माइनक्राफ्ट आजकल काफी चल रहा है. मेरे भी दोनों बच्चे माइनक्राफ्ट तो टॉप ऑफ माइंड. सो ऐसे गेम्स है तो इन्फ्लुएंसर्स क्या होते हैं, वो एक गेम पे पकड़ के काफी पॉपुलर हो जाते हैं. आप जो बोल रहे हैं अगर वो गेम्स, जैसे इंडिया में हाल में पिछले 2-3 साल में ये काफी पॉपुलर गेम्स बार बार बैन हुए.
यस.
और मुझे पता है कि काफी इन्फ्लुएंसर्स को उसमें तकलीफ आई. आई थिंक इन्फ्लुएंसर को सोचना है कि मैं डाइवर्सिफाई थोड़ा पोर्टफोलियो अगर कर सकूँ तो कैसे करूँ. बट इन्फ्लुएंसर्स का एक टाइम, लाइफ टाइम जो रहता है, बिकॉज कंज्यूमर प्रेफरेंस भी बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है, राइट? तो दे हैव टू मैक्सिमाइज इट इन द टाइम दे हैव.
तो यू डोंट थिंक कि सस्टेनेबली ये 15-20 साल चल सकता है
फॉर अ इन्फ्लुएंसर? उनको इवॉल्व करते रहना पड़ेगा. एक गेम पे निर्भर होके बहुत डिफिकल्ट रहेगा.
इवॉल्व होना पड़ेगा, मतलब गेम दूसरे खेलते रहना,
गेम दूसरे
और हर गेम में फिर उतना ही बेहतर बनना पड़ेगा वापस से. तो इट्स लाइक तुम यू नो हाउ, जैसे मान लो एक स्पोर्ट्स वाले हो, तुम क्रिकेट खेलते हो, तुमको एक बार तुमने 15 साल खेला, 20 साल खेला, अपनी स्किल्स बेटर कर ली कि मैं बैटिंग बहुत बढ़िया करता हूँ.
हाँ.
अब लाइफ टाइम तुम्हें वही करना है.
करेक्ट.
बट इट्स यू आर टेलिंग कि ई स्पोर्ट्स में या स्पोर्ट या गेमिंग करियर में तुम 2 साल एक गेम खेलो बहुत एक्सपर्ट हो, तब तक गेम चेंज जाएगा, फिर तुम दूसरा खेलो.
थोड़ा शॉर्टर स्पैन है लाइफ टाइम.
बहुत ज़्यादा. कितने पैसे कमा सकते हैं वैसे गेमर्स, कितने पैसे कमाते होंगे?
देखिए अगेन दो तरीके के इनकम सोर्सेज हैं. एक है कि आप ई स्पोर्ट्स में खेल रहे हो, आप टीम्स में पार्टिसिपेट कर रहे हो, प्राइज बने के खेल रहे हो, आपको स्पॉन्सरशिप मिल रही है, एंडोर्समेंट मिल रहा है, वो एक टाइप की अर्निंग हो गई. या आप गेमिंग इन्फ्लुएंसर हो जहाँ आप यूट्यूब पे एक्सेट्रा गेम्स को स्ट्रीम कर रहे हो. These are two different things. Sometimes there's an overlap, but they're two different things. दोनों की स्ट्रीम्स में अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ है. बट आज के दिन यंगस्टर्स इंडिया में साल के फ्यू करोड़ तो कमा रहे हैं काफ़ी
गेम में,
गेमिंग में एक तरीके से या दूसरे तरीके से. तो अपॉर्चुनिटीज तो बढ़ रही है.
सो देयर अ गेमर कॉल्ड स्काउट.
यस.
पता है आपको?
हाँ. तो मेरा बिजनेस है, मुझे पता होना चाहिए.
मे बी आप बर्ड व्यू से देखते हो, बट ठीक है. स्काउट, राइट? तो स्काउट ने रिसेंटली पॉडकास्ट में बोला था, स्काउट इज अ फ्रेंड, इज बीन ऑन द पॉडकास्ट पहले भी, तो उसने एक पॉडकास्ट में बोला था रिसेंटली कि ये ई स्पोर्ट्स इंडिया में प्रॉफिटेबल नहीं है. डू यू अग्री?
किसके लिए?
ही जस्ट सेड इट लाइक अ ब्लैंकेट स्टेटमेंट कि ई स्पोर्ट्स,
आई थिंक इट्स अ न्यू इंडस्ट्री एंड फॉर एनी न्यू इंडस्ट्री थोड़ा टाइम लगता है स्केल होने के लिए. प्रॉफिटेबिलिटी स्केल पे आती है. और जो ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है वो आपकी कोई भी स्पोर्ट्स मीडिया की इंडस्ट्री है. तो जब भी वो पॉपुलैरिटी और व्यूअरशिप बढ़ेगी,
तब पैसे बनेंगे,
मीडिया राइट्स आएंगी. जिस दिन भरे जो चैनल्स हैं, जैसे वो आईपीएल में हजारों करोड़ देते हैं या 100 करोड़ भी देने के लिए तैयार हो आए, उस दिन वो पैसा परकुलेट होएगा. तो मुझे लगता है कि मीडिया राइट्स ग्रो हो रही है. जैसे हमारी कंपनी ने अभी कुछ महीने पहले स्टार स्पोर्ट्स के साथ एक टाइप करा, BGMS करके एक टूर्नामेंट रन करा स्टार स्पोर्ट्स पे, जो हॉटस्टार पे भी आया और मेन लीनियर टीवी पे भी आया और काफ़ी पॉपुलर था. तो जैसे वो राइट्स बढ़ेंगी और जैसे ऐसे टूर्नामेंट्स और ये IPs बढ़ेंगे, उसमें जो मीडिया का पैसा आएगा वो इकोसिस्टम में पॉपुलेट होएगा, उससे वो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी.
तो वैसे आई लव द आंसर कि किसके लिए स्पोर्ट्स इंडिया में पॉपुलर नहीं है, किस प्रॉफिटेबल नहीं है, किसके लिए? क्योंकि गेमिंग कंपनीज तो बना रही होंगी पैसे. इंडिविजुअल क्रिएटर्स तभी बनाएंगे जब मीडिया राइट्स बिकेंगे और जब थोड़ा बड़ा होगा इकोसिस्टम. बट राइट, व्हेन डू यू एक्सपेक्ट कि कोई बड़ा टीवी राइट होगा? हाउ मेनी इयर्स आर वी
ऑलरेडी? होना चालू हो गया जो हमने,
एक दो साल में आ जाएगा?
हो रहा है, इट्स ग्रो होएगा. आई थिंक अगर आप 3 साल देखो तो यहाँ से 5 से 10 गुना हो सकता है.
विच कंट्री इज द बिगेस्ट फॉर गेमिंग वैसे,
इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यूज
या इन टर्म्स ऑफ यूजर्स एंड रेवेन्यू? दोनों अलग अलग होते हैं.
आई थिंक रेवेन्यूज US, चाइना
सबसे बड़ा है.
US एंड चाइना आर लार्ज इन टर्म्स ऑफ यूजर बेस. नाउ चाइना, नाउ इंडिया एक्चुअली ऑन मोबाइल फोन्स.
US से बड़ा यूजर बेस हमारा
जरूर.
एंड वॉट वुड बी द रेवेन्यू डिफरेंस कि अगर US में, जैसे आपने बोला 150 बिलियन के आसपास गेमिंग रेवेन्यू होगा,
इंडिया में 2-3 बिलियन डॉलर का बिजनेस है.
क्या बात कर रहे हो? बस
करेक्ट. उसमें भी आप सब ऑनलाइन फैंटेसी कंपनीज और ये सब कंपनीज को भी जोड़ दो,
ऑलमोस्ट 70-75 times.
करेक्ट, बट उसमें आपको अपॉर्चुनिटी दिखनी चाहिए.
वैसे इंडियन गवर्नमेंट गेमिंग को सपोर्ट नहीं करती ना ज़्यादा, की करती है?
इसमें दो टॉपिक्स है.
ओके.
एक है कोर गेमिंग, गेमिंग फॉर एंटरटेनमेंट, जो काफ़ी हम अभी बात कर रहे थे, जिसमें गवर्नमेंट ने काफ़ी पॉजिटिव स्टैंड लिए है. उसमें दो चीज़ें करी. एक तो AVGC कमेटी बनाई है, टास्क फोर्स बनाया है. मेक इन इंडिया कैसे पॉपुलराइज हो सकता है, एक इंटेंट है कि लोकल डेवलपर्स को कैसे सपोर्ट करें इंडिया गेम्स बनाने के लिए और ग्लोबल एक्सपोर्ट करने के लिए. उसमें तो काफ़ी काम चालू है और काफ़ी सपोर्ट भी आ रहा है गवर्नमेंट का. एक दूसरा सेगमेंट है जो रियल मनी गेमिंग बोलते हैं, जैसे आपकी फैंटेसी स्पोर्ट्स हो गए, जैसे आपका पोकर हो गया, रमी हो गया, जहाँ लोग पैसा डालते हैं पैसा जीतने के लिए. आई थिंक उसमें काफ़ी ग्रे एरियाज चले और हाल में काफ़ी टैक्सेशन और सबको लेके काफ़ी कन्फ्यूजन चला है. अभी कुछ नए रूल्स आए हैं तो वो एक गवर्नमेंट काफ़ी क्लोजली देख रही है फ्रॉम अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी परस्पेक्टिव. पीपल शुड नॉट गेट एडिक्टेड एट्सेट्रा. So I think ये आपको दो तरफा देखना पड़े. बट ओवरऑल मुझे लगता है कि अपनी गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी आगे.
बट अभी तो गवर्नमेंट विनिंग प्राइस पे 30% चार्ज कर देती है ना.
हाँ,
तो 30% टैक्स ऑन एवरी विनिंग प्राइस, यू फील दैट्स लाइक टू मच?
आई डोंट थिंक सो. आई मीन आज के दिन आप जो कुछ भी इनकम आप कमाते हो,
तो वैसे
मोर ऑर लेस वही टैक्स लगता है. तो विनिंग में भी अगर आपका 30% लग रहा है, आई थिंक नेशन बिल्डिंग में हम सभी को
कंट्रीब्यूट करना चाहिए. ये बड़ा IPO टाइप आंसर था. ठीक है,
अभी 3 साल में सीख लिया डिप्लोमेटिक आंसर.
ओके, व्हाई डू थिंक इंडिया में भी आज तक है ना ऐसे कभी गेम नहीं बने जो रॉकस्टार?
हाँ, ट्रिपल ए, व्हाट वी कॉल ट्रिपल ए,
ट्रिपल ए बोलते हो? ओके. हाँ, मतलब रॉकस्टार गेम्स, यहाँ पे गेम्स इतने बड़े.
देखिए, इसके लिए दो कारण है. बहुत ऑब्वियस रीजन से इंडियन होम मार्केट जो अपना था, आज भी इतना भरा नहीं था कि आप एक ट्रिपल ए गेम बना सको. बिकॉज जो ट्रिपल ए गेम रहता है बहुत साल लगते हैं बनाने के लिए और बहुत पैसा लगता है. और आपका होम मार्केट अभी तक वो लेवल का मोनेटाइजेशन नहीं हो रहा था कि आपका होम मार्केट वैसा डेवलपमेंट सपोर्ट कर पाए.
या
दूसरी बात, जो इंडिया में गेम्स बनाए ग्लोबल मार्केट के लिए, इंडिया में एनिमेशन ग्राफिक्स कोडिंग का टैलेंट बहुत अच्छा था, बट डिज़ाइन टैलेंट फॉर गेमिंग ओवर द ईयर्स वॉज नॉट देयर बिकॉज अ लॉट ऑफ द कंट्रीज अब्रॉड. आप चाइना देख लो, US देख लो, नॉर्डिक कंट्रीज देख लो, वहाँ गेमिंग कल्चर बहुत पहले से है. उनके पास डिवाइस एक्सेस भी बहुत था, PCs, consoles, जो इंडिया में था नहीं. सो इंडियन टैलेंट ऑन गेम डिज़ाइन वॉज स्टिल कैचिंग अप. 2010 के बाद क्या हुआ, काफ़ी जो ग्लोबल गेमिंग कंपनीज थी उन्होंने बैक ऑफिस यहाँ सेटअप करना चालू कर. सो टैलेंट, इंडियन टैलेंट स्टार्टेड गेटिंग ट्रेंड ऑन ग्लोबल गेम्स. तो अब पिछले कुछ सालों में, पिछले 3 से 5 सालों में
अब स्टार्ट
आपको दिख रहा है कि इंडिया में गेम्स ऐसे बन रहे हैं या इंडियन डेवलपर्स ऐसे गेम्स बना रहे हैं जो ग्लोबल मार्केट्स में कम्पीट कर रहे हैं. तो अब बनने चालू हुए एंड आई थिंक इंडियन मार्केट भी अपना बड़ा होते जा रहे हैं कि अब स्टूडियोज इंडियन मार्केट में भी ट्रिपल ए टाइटल्स अटेम्प्ट कर रहे हैं.
Soon there can be one. Correct. Now we are getting there.
Yeah.
Okay. कितना ट्रिपल ए गेम बनाने के लिए कितना पैसा लगता है वैसे यूजुअली?
ग्लोबली अगर आप देखो तो 500 करोड़ रुपया
एक गेम बनाने के लिए. कौन? ओके, 500 करोड़. लेट्स टॉक अबाउट इन, लेट्स गिव इट अ फ्रेमवर्क टू ऑफ एन एग्जाम्पल. GTA 6, अब कितने में GTA 6 जैसा गेम बनता है?
मैंने स्पेसिफिक डेटा तो देखा नहीं है, बट आई एम अज्यूमिंग उनका बजट $100 मिलियन का बजट तो होएगा.
700-800 करोड़.
अब आपने मेरे को पूछा तो मैं जाके चेक करूंगा.
एस्टिमेट, अगर 700-800 करोड़ का गेम बनाते हैं लोग, तो उस पर कितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हो, कितने टाइम में? कि 700 करोड़ अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ टू बिल्ड वन गेम.
देखिए, GTA टाइप ऑफ गेम जो ग्लोबल फ्रेंचाइजेस है कॉन्सोल और PC और सब पे, उनका इनकम बिलियंस ऑफ डॉलर्स में जाता है. राइट, जैसे मैं पहले बता रहा था, US में ही गेमिंग $150 बिलियन बिजनेस है. तो
उसका ईयर 1-2% लगता है कि एक गेम ले जाता होगा.
तो जो बड़े टाइटल्स हैं उनके रेवेन्यूज बिलियंस ऑफ डॉलर्स में जाते हैं, और इसलिए कॉस्ट निकल सकता है उनका.
तो 700-800 करोड़ का अगर कोई गेम बनाता है तो वो 7-8 हज़ार करोड़ कमा सकता है.
करेक्ट.
टेल मी, देयर इज वन कंपनी विच एवरी टाइम वी टॉक अबाउट गेमिंग, आई डोंट नो व्हाई इनका नाम क्यों आता है, क्या ये गेम्स बनाती है कि नहीं कमाती, ये बताओ मुझे. एनवीडिया. ओके, सो एनवीडिया क्या करता है? एंड उसका स्टॉक बहुत बढ़ने लग गया एकदम से. AI की बात होती तो वो बढ़ने लग जाता है, गेमिंग की बात होती तो वो बढ़ने लग जाता है, ग्लोबल ट्रेंड होता है. सो एनवीडिया इतना इंपॉर्टेंट क्यों और क्या करता है?
देखिए, गेमिंग चिप्स जो रहते हैं, प्रोसेसर रहते हैं, एनवीडिया वो बनाता है. राइट, एंड गेमिंग रिक्वायर्स वेरी पावरफुल प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज, स्पेशली हाई एंड गेमिंग टू गेट द राइट एक्सपीरियंस. सो एनवीडिया इज अ मास्टर ऑफ दैट. एंड इसके लिए जैसे गेमिंग बढ़ता है उनका काफ़ी स्टॉक में बढ़ता है. और अभी AI में भी वही है कि AI प्रोसेसिंग के लिए द GPU पावर जो बोलते हैं, प्रोसेसिंग पावर बोलते हैं, उसका बहुत रिक्वायरमेंट है. एंड NVIDIA इज गॉट लॉट ऑफ स्पेसिफिक डिज़ाइन अराउंड दैट.
ओके, सो NVIDIA ये करता है. व्हाट डू यू थिंक, मेरे को दो क्वेश्चन है बस लास्ट के. फर्स्ट इज कि NVIDIA जैसे दुनिया में और कोई भी नहीं है क्या?
नहीं, देर आर कंपनीज बट दे आर द बाय फार द लार्जेस्ट.
ओके, सो दे, यू कांट आउट कम्पीट देम, यू कांट बिल्ड एनीथिंग व्हाट दे आर बिल्डिंग.
देखिए, क्या होता है टेक्नोलॉजी में, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू विल ऑलवेज फील दैट देर आर प्लेयर्स हु आर नॉट बीटेबल. राइट, बट देन टेक्नोलॉजी शिफ्ट्स हैपन एंड थिंग्स चेंज. सो आई डोंट थिंक टेक बिजनेसेस जनरली आर एवर सच दैट दे विल रिमेन मोनोपोलीज फॉर एवर.
कि हाँ, पहले इंटेल था, माइक्रोसॉफ्ट
है. थिंग्स कीप चेंजिंग, राइट? इट्स लाइक गूगल एज अ सर्च इंजन हैज बीन द बिगेस्ट मोनोपोली फॉरएवर.
या
बट नाउ देयर इज अ लॉट ऑफ टॉक, आई डोंट नो हाउ मच ट्रू और नॉट, दैट हाउ AI एंड ChatGPT एंड ऑल दीस गाइस आर पोटेंशियली गोइंग टू डिसरप्ट देम. राइट, सो ऑल आई एम सेइंग इज देयर इज अ कंटीन्यूअस फ्लक्स. एट वन पॉइंट ऑफ टाइम फेसबुक वाज एक्सट्रीमली पॉपुलर, नाउ पीपल आर गोइंग मोर ऑन इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप. सो थिंग्स कीप चेंजिंग. द सेम वे टुडे NVIDIA ऑफ कोर्स इज वे अहेड ऑफ द कर्व. But will they forever remain that? We don't know.
They don't.
Yeah.
Do you feel out of all of these tech businesses, there's one tech business which looks at least more defendable than every other company? That's Amazon. Do you feel so okay, like beating them? So you can maybe beat, let's say, I don't know. You were just talking about platform, Instagram, yeah, ko, yeah.
Yeah.
Koi dusra.
I think any business that is innovating at a very rapid pace and way ahead in its curve is not easy to catch up with. Right? Aap latest dekho to, if you see, and the markets reward that, right? If you see what Elon Musk is doing with his businesses, he's moving. Let's take SpaceX, for example.
Yeah.
There's such large innovations that have happened there that it's not easy to catch up to businesses like that.
Yeah.
At a rapid pace. But then that's not easy to achieve also. So
true. Fair. Who do you think is your biggest competitor in India?
I'm thinking I can't.
I love that confidence. But okay. So tell me in one line, what is the biggest opportunity for Nazara going ahead? And what is the biggest threat that you see by going
so ahead? Biggest opportunity is India will become the gaming nation of the world. And Nazara can really continue to thrive, be a leader and pioneer of that, right? I think what we spent 20 years, jo 20 saal humne lagaye isme ye point tak lane mein, 5 saal mein hum isko kafi aage le ja sakte hain. To usi pe hame focus karke kaam karna hai, without getting distracted or getting complacent. Disruption mein, hamare business mein technology disruption continuous rehta hai. Opportunity bhi dekh sakte hain या डिसरप्शन भी देख सकते हैं. जैसे मैंने पहले बोला था, आज के दिन वेब 3, VR, AI, बहुत सारी चीज़ें हो रही है एक साथ, जिसमें 3-4 साल में गेमिंग पूरा ही चेंज हो जाएगा. तो हमें उसमें जल्दी भागना पड़ेगा सो दैट हम लोग रेलेवेंट रहे. एंड वो मिस करेंगे तो हमें चैलेंज आएगा.
दैट्स द बिगेस्ट चैलेंज. पेस ऑफ चेंज,
स्टेइंग रेलेवेंट.
पेस ऑफ चेंज, दैट्स यूजुअली, बट दैट्स अ चैलेंज फॉर ऑल ऑफ अस. That's not you alone. We are in the same game. Ki kal AI aa jayega aur sari technology aayegi to hum kya karenge hame nahi pata hoga. So we just need to be relevant as well. Perfect. Thank you so much. I covered a lot of questions with you. My pleasure. It was pleasure having you.
My pleasure.
Thanks for this.
Thank
pleasure
you.
Meeting you.
Thank you.
थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए. हमें बताओ कि और ऐसे कौन से गेस्ट हैं जिनको हम ला सकते हैं, या ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो हम इन गेस्ट से पूछें. और अगर आपके पास कुछ बुक्स के रेफरेंसेज हैं या कुछ आर्टिकल के रेफरेंसेज हैं जो आप चाहते हो कि मैं पढूं, जिससे मैं अपना नॉलेज बेटर कर सकता हूं, जिसकी वजह से शायद मेरी पॉडकास्टिंग स्टाइल और बेहतर हो पाएगी, तो प्लीज़ हमें सजेशंस में बताओ कॉमेंट्स में, ताकि आपके फीडबैक से मैं एक बेहतर पॉडकास्टर बन सकूं और आपके लिए एक बेटर वैल्यू ला सकूं. अंटिल द नेक्स्ट एपिसोड, कीप फिगरिंग आउट. बट बिफोर यू डू दैट, शेयर दिस विद एटलीस्ट वन पर्सन, क्योंकि एक कॉन्वर्जेशन किसी की पूरी लाइफ चेंज कर सकती है. एंड वी नीड सर्टन कॉन्वर्जेशंस इन द कंट्री टू हेल्प अस गेट अहेड. थैंक यू सो मच.